एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। आज हम अर्नेस्ट हेमिंग्वे की एक बहुत ही खास, मतलब थोड़ी पर्सनल किताब पर बात करने वाले हैं। नाम है अ मूवेबल फीस्ट, और ये किताब इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि ये उनके गुजरने के बाद 1964 में छपी थी।
हमारे एक श्रोता ने इस किताब और हेमिंग्वे के उन पेरिस वाले दिनों पर कुछ नोट्स और लेख भेजे थे, और वो जानना चाहते थे कि भाई इस किताब से क्या सबसे जरूरी बातें, क्या सबक सीखे जा सकते हैं।
जी हाँ, और ये किताब वाकई खास है। ये हमें सीधे, मतलब एकदम टाइम मशीन की तरह, 1920s के दशक के पेरिस में ले जाती है। वो दौर जब हेमिंग्वे एक युवा थे, संघर्ष कर रहे थे, एक लेखक के तौर पर अपनी पहचान बनाने की कोशिश में थे। अर्नेस्ट हेमिंग्वे, जिनका जिक्र हम कर रहे हैं, वो 1899 से 1961 तक रहे, एक अमेरिकी उपन्यासकार, कहानीकार, पत्रकार।
और उनकी स्टाइल वो बहुत जानी जाती है। मिला,
ये तो सही है कि हेमिंग्वे साहित्य की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन खासकर ये किताब ए मूवेबल फीस्ट, ये आज क्यों मायने रखती है? श्रोता के लिए इसमें क्या खास है?
देखिए, ये किताब कई वजहों से अहम है। पहली बात तो ये कि जैसा हेमिंग्वे ने पेरिस में सीखा, और ये बात उन्होंने कही भी, तुम्हें बस एक सच्चा वाक्य लिखना है।
एक सच्चा वाक्य?
हाँ, ये उसूल जैसे उनके जीवन और लेखन का आधार बन गया। दूसरी बात, ये किताब सिर्फ यादें नहीं है, ये नहीं कि बस किस्से सुना दिए, ये इस पर सोचने को मजबूर करती है कि कला क्या है, बड़े सपने देखना, महान बनना, इसकी कीमत क्या होती है।
अच्छा, कीमत?
हाँ, श्रोता के भेजे नोट्स में भी इस तनाव का जिक्र था कि कैसे सफलता अक्सर निजी जीवन पर भारी पड़ जाती है।
मतलब ये सिर्फ एक लेखक की कहानी नहीं है, बल्कि कुछ ज्यादा गहरी बात कह रही है।
बिल्कुल, इसे अमेरिकी साहित्य में शायद कलात्मक विकास का सबसे खुला और कह सकते हैं ईमानदार सेल्फ पोर्ट्रेट माना जाता है। ये सिर्फ एक साहित्यिक दिग्गज के बनने की कहानी नहीं बताती, बल्कि उस शहर पेरिस में मासूमियत के खो जाने की भी कहानी है। वो शहर जिसने उन्हें प्यार भी सिखाया और नुकसान भी, दोनों का मतलब समझाया।
और कमाल की बात यह है कि किताब लिखी तो गई है उम्र के तजुर्बे के साथ आखिरी दिनों में, लेकिन इसमें जवानी की वो भूख, वो तड़प, वो साफ महसूस होती है।
चलिए, तो इस सफर को थोड़ा शुरू से समझते हैं। श्रोता के नोट्स में हेमिंग्वे के बचपन और परिवार के बारे में भी कुछ सवाल थे। पेरिस पहुंचने से पहले उनकी जिंदगी कैसी थी, क्या चीजें थी जिन्होंने उन्हें वो लेखक बनाया जो वो बने?
उनका जन्म शिकागो के पास हुआ था, ओक पार्क, इलिनॉइस में। पिता डॉक्टर थे, और उनसे हेमिंग्वे को प्रकृति से लगाव मिला। शिकार, मछली पकड़ना, ये सब शौक वहीं से आए।
अच्छा, और ये अनुभव बाद में उनके लेखन में साफ झलकता है। प्रकृति को लेकर, मौत को लेकर उनकी समझ बहुत गहरी, बहुत असल लगती है। माँ संगीतकार थीं, तो शायद उनसे वो कला की तरफ झुकाव, वो संवेदनशीलता मिली।
ये तो दो अलग दुनियाएं हो गईं, एक बिल्कुल प्रैक्टिकल, थोड़ी मर्दाना कह लीजिए, और दूसरी कलात्मक, संवेदनशील।
हाँ, और शायद इन दोनों दुनियाओं के बीच का जो खींचाव है, वो उनके काम में भी नजर आता है। एक्शन और सोच विचार के बीच का एक संतुलन साधने की कोशिश।
दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई नहीं की है ना?
नहीं की, इसके बजाय उन्होंने पत्रकारिता चुनी। 1917 में कंजास सिटी स्टार अखबार में काम करना शुरू किया, और ये फैसला, ये बहुत अहम साबित हुआ।
कैसे? मतलब अखबार के काम ने उनकी लिखने की शैली पर असर डाला?
बिल्कुल, उस अखबार का एक स्टाइल गाइड था, नियम थे लिखने के।
अच्छा, क्या नियम थे?
छोटे वाक्य इस्तेमाल करो, पहले पैराग्राफ्स छोटे रखो, सीधी और मजबूत भाषा लिखो, कोई फालतू की सजावट नहीं। और यही बातें बाद में हेमिंग्वे की मशहूर लेखन शैली की नींव बनी, वो जो कम शब्दों में ज्यादा कहने की कला है।
बिल्कुल,
उसकी शुरुआत यहीं से हुई।
समझ गया। और फिर पहला विश्व युद्ध आया।
जी,
श्रोता ने जो लेख साझा किए थे उनमें इस दौर को एक बड़ा मोड़ बताया गया है।
हाँ, ये उनके जीवन का एक बहुत बड़ा, शायद सबसे बड़ा निर्णायक मोड़ था। उन्होंने इटली में अमेरिकन रेड क्रॉस के लिए एम्बुलेंस ड्राइवर के तौर पर वॉलंटियर किया, स्वेच्छा से गए।
सिर्फ 18 साल की उम्र में, है ना?
हाँ, सोचिए, सिर्फ 18 साल की उम्र में वो इटली के मोर्चे पर थे, और वहाँ एक मोर्टार के हमले में बुरी तरह घायल हो गए। ये मौत से उनका पहला सीधा सामना था, बिल्कुल आमने सामने।
बाप रे।
और इस अनुभव ने उन्हें अंदर तक बदल दिया। दशकों तक उनके लेखन में इसकी छाप दिखती रही। उनका जो मशहूर फलसफा है, ग्रेस अंडर प्रेशर।
हाँ, दबाव में गरिमा बनाए रखना।
बिल्कुल, वो शायद यहीं से पनपा, मुश्किल हालात में भी अपनी शान, अपनी गरिमा बनाए रखना।
अब आते उन पेरिस वाले सालों पर, 1921 से 1926 का दौर, जिन पर ये किताब इमूवेबल फीस्ट टिकी हुई है। श्रोता के नोट्स भी ज्यादातर इसी पर थे।
हाँ, तो वे अपनी पहली पत्नी हैडली रिचर्डसन के साथ पेरिस आए थे। तब वो टोरंटो स्टार अखबार के लिए लिखते थे। कोई बड़ा नाम नहीं थे, बस एक संघर्ष करते हुए पत्रकार और लेखक। जैसा उन्होंने बाद में इस किताब में लिखा, उन दिनों वे, और ये लाइन बहुत मशहूर है, बहुत गरीब और बहुत खुश थे।
बहुत गरीब और बहुत खुश, ये सुनने में कितना विरोधाभासी लगता है,
है ना? और ये लाइन बहुत कुछ कहती है। किताब की मुख्य थीम भी शायद यही विरोधाभास है।
उनका जीवन था कैसा उन दिनों, क्या करते थे?
बिल्कुल, पेरिस में उनकी जिंदगी, कह सकते हैं, अनुशासन का एक पाठ थी, एकदम सधी हुई दिनचर्या। वे एक आरा मशीन के ऊपर बने ठंडे पानी वाले फ्लैट में रहते थे। सोचिए, ठंडे पानी वाला फ्लैट।
उफ।
सुबह जल्दी उठकर किसी पसंदीदा कैफे जैसे ला क्लोजरी डेल इलास, वहां लिखने बैठ जाते थे। गुजारा बहुत साधारण खाने और सस्ती शराब पर होता था।
और भूख का भी जिक्र आता किताब में।
हाँ, भूख इतनी लगती थी कि वो उसे अपनी इंद्रियों को, अपनी सेंसेस को तेज करने का एक तरीका मानते थे। श्रोता के एक लेख में से भूख का दर्शन कहा गया है, कैसे कमी आपको ज्यादा गहराई से महसूस करना सिखा सकती है।
ये तो काफी संघर्ष भरा जीवन था, पर लगता है रचनात्मकता के लिए अच्छा था। इसी दौरान उन्होंने लिखना सीखा और अपनी पहचान बनाई।
हाँ, पेरिस उनके लिए खुली यूनिवर्सिटी जैसा था, माहौल ऐसा था। यहाँ उन्हें गॉटरूथ स्टीन जैसे मेंटोर मिले, वो उनके लेखन पर बेबाक, कभी कभी कड़ी राय देती थीं।
अच्छा।
एज्रा पाउंड ने उन्हें सिखाया कि कैसे कम शब्दों में ज्यादा असर पैदा किया जाए, जिसे अंग्रेजी में कॉन्सिजन कहते हैं, और उन्हें मॉडर्निस्ट मूवमेंट से जोड़ा। सिल्विया बीच की मशहूर किताबों की दुकान शेक्सपियर एंड कंपनी, वो तो उनके लिए लाइब्रेरी और अड्डा दोनों बन गई थी। यहीं से उनकी वो खास कसी हुई स्टाइल धीरे धीरे शक्ल लेने लगी।
लेकिन इसी दौर में वो मशहूर हादसा भी हुआ, पांडुलिपियों के खो जाने वाला, वो नोट्स में भी था।
जी हाँ, दिसंबर 1922 में हैडली उनसे मिलने स्विट्जरलैंड जा रही थी, और पेरिस के गार द लियोन स्टेशन पर उनका एक सूटकेस चोरी हो गया, और उस सूटकेस में हेमिंग्वे की लगभग सारी शुरुआती लिखी हुई चीजें थी, कहानियां, एक नॉवल का ड्राफ्ट, सब कुछ कार्बन कॉपी भी नहीं।
अरे बाप रे, ये तो किसी भी लेखक के लिए तबाही जैसा होगा, सोचकर ही डर लगता है।
बिल्कुल, ये एक भयानक नुकसान था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन शायद इसी घटना ने उन्हें एक तरह से आजाद कर दिया।
आजाद कैसे?
मतलब उन्हें सब कुछ फिर से लिखना पड़ा, शायद अपनी याददाश्त और कल्पना पर ज्यादा भरोसा करना पड़ा, पुरानी लिखी चीजों पर निर्भरता खत्म हो गई। हो सकता है इसी वजह से उनका लेखन और मजबूत हुआ और सधा हुआ।
अच्छा, ये भी एक नजरिया है।
हाँ, और एक के बाद ही उनकी पहली बड़ी किताब आई, इन आर टाइम 1925, और फिर द सन ऑल्सो राइजेज 1926, और इसी किताब द सन ऑल्सो राइजेज ने उन्हें लॉस्ट जेनरेशन यानी युद्ध से मोह भंग हुई पीढ़ी की आवाज बना दिया, रातों रात मशहूर हो गए।
और ये किताब इमूवेबल फ्रीस्ट, ये उन्होंने कब लिखी, ये जानना भी दिलचस्प है। नोट्स में इसका जिक्र था कि ये बाद में लिखी गई।
ये उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में लिखी, 1950 के दशक के अंत में। तब तक वो दुनिया भर में मशहूर हो चुके थे, नोबेल जीत चुके थे, मतलब सफलता के शिखर पर थे।
लेकिन अंदर से,
हाँ, लेकिन साथ ही वो डिप्रेशन से, शक से, गिरती सेहत से भी जूझ रहे थे। तो ये किताब एक तरह से उस पुराने युवा हेमिंग्वे को फिर से ढूंढने की कोशिश थी, वो इंसान जो वो शोहरत, कामयाबी और निजी त्रासदियों से बदलने से पहले थे। शायद ये लिखने का अमल उनके लिए उस खोई हुई मासूमियत और खुशी को याद करने और उसका मातम बनाने का एक तरीका था।
अब अगर हम उनके मूल दर्शन पर आएं, उनके मूल्यों पर, इस किताब और हेमिंग्वे के अनुभवों से क्या पता चलता है? हमारे श्रोता खासकर ये जानना चाहते थे कि उन्हें किस चीज ने आगे बढ़ाया, क्या ड्राइव करता था उन्हें।
देखिए, हेमिंग्वे का मानना था, और ये उनके काम से झलकता है, कि जिंदगी असल में दुख भरी है, ट्रेजिक है, लेकिन इसे सार्थक बनाया जा सकता है।
कैसे?
प्रामाणिक अनुभवों से, मतलब असली सीधे अनुभवों से, और ईमानदार अभिव्यक्ति से, यानी बिना लाग लपेट के सच बोलने या लिखने से। उनके लिए लिखना सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, ये एक पवित्र काम था, एक कॉलिंग थी, जिसमें पूरी तरह डूबना और बेझिझक ईमानदारी जरूरी थी। लेखक का काम दुनिया को सच्चाई से देखना है और उसे पन्नों पर उतारना है, बस।
और यही से उनका वो मशहूर आइसबर्ग थ्योरी या हिमशेल सिद्धांत आया है ना, श्रोता के एक नोट में इसका जिक्र था।
बिल्कुल, उनका मानना था कि कहानी में सतह पर सिर्फ एक छोटा हिस्सा दिखना चाहिए, जैसे बर्फ का पहाड़ आइसबर्ग होता है ना।
हाँ, जिसका ज्यादातर हिस्सा पानी के नीचे होता है।
सही कहा, बस वही असली, मतलब असली ताकत गहराई में छुपी होनी चाहिए, उन चीजों में जो कहीं नहीं गईं, जो सिर्फ महसूस कराई गईं। ये सिद्धांत सिर्फ लिखने पर नहीं, शायद उनके जीने के तरीके पर भी लागू होता था। गरिमा इस बात में थी कि क्या जाहिर नहीं किया गया, ताकत उसमें थी जो दिखाया नहीं गया।
और उन्हें प्रेरणा कहाँ से मिलती थी, क्या चीज उन्हें लगातार लिखने और बेहतर होने के लिए उकसाती थी? कंपटीशन का भी जिक्र था नोट्स में।
हाँ, प्रेरणा के कई स्रोत थे। सबसे बड़ी प्रेरणा तो थी साहित्यिक सच्चाई की खोज, अनुभव को इतने सटीक, इतने किफायती और इतने गहरे गद्दे में ढालना कि वो हमेशा के लिए जिंदा रहे, अपने लिखे जाने के हालात से भी आगे निकल जाए। दूसरी बड़ी प्रेरणा थी मुकाबला, कॉम्पिटिशन। ये बात सही है, वो दूसरे लेखकों को सिर्फ साथी नहीं मानते थे बल्कि प्रतिद्वंद्वी मानते थे, जिनसे उन्हें आगे निकलना था, जिन्हें पछाड़ना था।
अच्छा।
हाँ, इस किताब में आप एफ स्कॉट फिट्ज़जेराल्ड जैसे अपने समय के दूसरे बड़े लेखकों के लिए उनकी मिलीजुली भावनाएं, तारीफ भी है और जलन भी साफ देख सकते हैं।
और शायद एक और बुनियादी इच्छा भी रही होगी, कुछ अंदरूनी।
हाँ, शायद सबसे बुनियादी इच्छा थी वक्त को थाम लेने की, जो क्षणभंगुर है उसे स्थायी बनाने की, खूबसूरती, समझ या एहसास के उन पलों को कला में बदल के हमेशा के लिए सहेज लेने की गहरी अंदरूनी चाहत।
उन्होंने अपनी जिंदगी में आई मुश्किलों का सामना कैसे किया? गरीबी, आलोचना, वो पांडुलिपियों का खोना, इन सब का सामना कैसे किया?
उनका रवैया था संयम और रचनात्मकता का, जैसे दो हथियार हों उनके। पेरिस में जब वो गरीब थे तो उन्होंने कमी को अनुशासन में बदल दिया। भूख और ठंड उनके लिए जैसे अपने काम के प्रति वफादारी की याद दिलाने वाले बन गए।
अच्छा, मतलब मुश्किल को ही ताकत बना लिया।
हाँ, कुछ ऐसा ही। जब आलोचना हुई या उनके काम को नकारा गया तो उन्होंने और मेहनत से और ज्यादा सटीकता से काम किया। उनका वो ग्रेस अंडर प्रेशर वाला फलसफा यही काम आता था कि आपका असली चरित्र तब पता चलता है जब आप मुश्किल हालात का सामना करते हैं, जब आप दबाव में होते हैं। हर नाकामी, हर शक उनके लिए जैसे ईंधन बन गया। मुश्किलों से भागे नहीं, बल्कि उन्हें अपनी कला को निखारने का और पैना करने का एक औजार बना लिया।
अगर हम किताब और उनके जीवन से तीन ऐसे खास पलों या मोड़ों को चुने जिन्होंने उनकी दिशा ही बदल दी, तो वो कौन से होंगे? श्रोता ने खास तौर पर ऐसे निर्णायक पलों के बारे में पूछा था।
हाँ, कई ऐसे पल थे, लेकिन तीन शायद सबसे अहम कहे जा सकते हैं। पहला, जैसा हमने पहले कहा, ला क्लोजरी डे लिलास कैफे में अपनी आवाज की वो खोज। जब वो एक कहानी से जूझ रहे थे, लिख नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने तय किया कि वो सिर्फ एक सच्चा वाक्य लिखेंगे, सबसे सच्चा वाक्य जो वो जानते थे। ये एहसास कि लिखने में सच्चाई सजी धजी भाषा से नहीं आती बल्कि सटीक और ईमानदार अवलोकन से आती है, इसने उनके लिखने के तरीके को जड़ से बदल दिया। ये उनके मशहूर स्टाइल की चाबी बन गया।
ये तो उनके लेखन के लिए वाकई एक मील का पत्थर था। दूसरा बड़ा मोड़?
दूसरा मोड़ था गर्ट्रूड स्टीन और एज़रा पाउंड जैसे साहित्यिक दिग्गजों से मिलना और उनसे सीखना। ये उनके लिए किसी ग्रेजुएट स्कूल की पढ़ाई जैसा था, पर असल जिंदगी में। स्टीन ने उन्हें सिखाया कि लेखन को विजुअल आर्ट की तरह देखो, भाषा की लय और दोहराव को समझो। उन्होंने ही हेमिंग्वे और उनके साथियों को लॉस्ट जेनरेशन नाम दिया था।
और पाउंड?
पाउंड, जिनकी हेमिंग्वे बहुत इज्जत करते थे, ने उन्हें कम शब्दों की अहमियत लिखाई, कंसिजन। उनकी कविताएं एडिट की और उन्हें साहित्यिक दुनिया के जरूरी लोगों से मिलवाया। इन रिश्तों ने उन्हें मॉडर्निज्म के केंद्र में ला दिया, उनके विकास को रफ्तार दी, आत्मविश्वास दिया। हालांकि बाद में ये रिश्ते थोड़े पेचीदा हो गए, वो अलग कहानी है।
और तीसरा निर्णायक मोड़, वो चोरी वाला हादसा, उसे आप एक मोड़ मानती हैं?
हाँ, तीसरा मोड़ था दिसंबर 1922 में उन पांडुलिपियों की चोरी। सुनने में ये सिर्फ एक नुकसान लगता है, लेकिन ये उससे ज्यादा था। ये एक भयानक झटका था, ऐसा जो किसी भी युवा लेखक को तोड़ सकता था, उसे पूरी तरह निराश कर सकता था।
बिल्कुल।
लेकिन जैसा हमने बात की, इसने शायद उन्हें अपनी शुरुआती कच्ची रचनाओं पर निर्भरता से मुक्त कर दिया। उन्हें सब कुछ नए सिरे से शुरू करने पर मजबूर किया। ये अनुभव चाहे कितना भी दर्दनाक रहा हो, इसने उन्हें कला की नश्वरता के चीजें खत्म हो जाती हैं और लगातार रचते रहने की जरूरत के बारे में एक कड़वा लेकिन जरूरी सबक सिखाया। इससे उनका इरादा और मजबूत हुआ और शायद उनका लेखन और ज्यादा सधा हुआ और ज्यादा फोकस्ड बन गया।
अब अगर हम सबक की बात करें, हेमिंग्वे के पेरिस के अन अनुभवों, उनके संघर्षों और जीतों से हम आम लोग क्या सीख सकते हैं? श्रोता ने पूछा था कि इससे जुड़े मानवीय सबक क्या हैं?
बहुत गहरे सबक हैं इसमें, जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। पहला और शायद सबसे बड़ा सबक है, अपनी महत्वाकांक्षाओं, अपने करियर, अपने सपनों और अपनी निजी खुशी या रिश्तों के बीच संतुलन बनाने की लगातार चलने वाली चुनौती।
ये तो आज भी एक बड़ी चुनौती है।
बिल्कुल, हेमिंग्वे की कहानी दिखाती है कि कलात्मक सफलता की कीमत अक्सर निजी रिश्तों और मन की शांति के तौर पर चुकानी पड़ती है। किताब में हेडली के साथ शुरुआती खुशी के दिन और फिर उनके अलग होने का दर्द, ये इस तनाव को साफ दिखाता है।
और अनुशासन का सबक, वो भी बहुत मजबूत लगता है उनकी कहानी में।
बिल्कुल, दूसरा सबक है रोजाना अनुशासन और अभ्यास की ताकत। ये बहुत अहम है। हेमिंग्वे का नियमित, लगभग साधुओं जैसा लिखने का रूटीन, रोज सुबह उठकर लिखना, चाहे मूड हो या ना हो, ये दिखाता है कि कैसे लगातार ध्यान लगाकर किए गए काम से असाधारण नतीजे मिलते हैं।
प्रेरणा का इंतजार नहीं करना।
हाँ, वो प्रेरणा का इंतजार नहीं करते थे, बल्कि काम करके प्रेरणा पैदा करते थे। ये किसी भी फील्ड में महारत हासिल करने का एक यूनिवर्सल सिद्धांत है।
और मुश्किलों के बारे में क्या उनसे भी कुछ सीखा जा सकता है, जैसा श्रोता के नोट्स में इशारा था, गरीबी, भूख?
हाँ, तीसरा सबक है मुश्किलों की रचनात्मक शक्ति। ये थोड़ा अजीब लग सकता है, पर सच है। पेरिस में उनकी गरीबी और भूख ने उन्हें सिखाया कि सीमाएं या कमियां असल में आपकी रचनात्मकता को बढ़ा सकती हैं, आपका फोकस तेज कर सकती हैं।
अच्छा।
हाँ, ये सिखाता है कि साधनों की कमी को गहराई और नई सोच के मौके में बदला जा सकता है। चौथा सबक है प्रामाणिक अनुभव का मूल्य, असली अनुभव। हेमिंग्वे का जिंदगी को पूरी तरह जीना, उसे सीधे अनुभव करना, शिकार, युद्ध, यात्रा, इसी पर जोर देना ही उन्हें इतनी सच्चाई और ताकत से लिखने की क्षमता देता था।
मतलब जिंदगी को जीना, सिर्फ उसके बारे में पढ़ना या सोचना नहीं।
बिल्कुल, ये हमें नकली या दूसरों के अनुभवों पर जीने के बजाय जिंदगी से सीधे जुड़ने की अहमियत बताता है।
और सच बोलने की जरूरत, वो एक सच्चा वाक्य वाली बात।
हाँ, पांचवा सबक है सच बोलने की जरूरत। वो एक सच्चा वाक्य लिखने का उनका इरादा सिर्फ लिखने तक ही सीमित नहीं था, ये जिंदगी में ईमानदारी बरतने की एक बड़ी सोच को दिखाता है, अपने प्रति, अपने काम के प्रति, दूसरों के प्रति। आज के दौर में ये और भी ज्यादा जरूरी लगता है। और आखिर में छठा सबक है कि यादें कैसे हमारे अतीत की समझ को शक्ल देती हैं, मेमोरी। ये किताब दिखाती है कि हम अपनी जवानी को कैसे याद करते हैं, अपने किए गए फैसलों से कैसे तालमेल बिठाते हैं और कैसे अतीत की यादें, अच्छी और बुरी दोनों, हमारे आज को लगातार प्रभावित करती रहती हैं, उसे रंग देती हैं।
तो इस पूरी बातचीत के बाद अगर हमें हेमिंग्वे और अमूवेबल फीस से तीन सबसे अहम बातें निकालनी हो श्रोता के लिए, तीन अंतिम निष्कर्ष, तो वो क्या होंगे एकदम सार रूप में?
जरूर, पहली होगी एक भावनात्मक अंतर्दृष्टि, इमोशनल इनसाइट। ये किताब कलात्मक महत्वाकांक्षा और निजी खुशी या रिश्तों के बीच के गहरे और अक्सर दर्द भरे तनाव को बहुत ईमानदारी से सामने लाती है। खास तौर पर हेडली को खोने का जो गहरा जिंदगी भर का पछतावा उनकी बातों में झलकता है, वो दिखाता है कि महान बनने की चाहत में किए गए फैसलों की मानवीय कीमत क्या हो सकती है।
दो दावत से पेरिस नहीं थी।
सही कहा, वो दावत फीस्ट सिर्फ पेरिस शहर नहीं था, वो हेडली के साथ बिताया वक्त और प्यार भी था। ये हमें अपनी जिंदगी में महत्वाकांक्षा और रिश्तों के संतुलन पर सोचने को मजबूर करता है।
ये वाकई छू लेने वाली बात है। दूसरी बौद्धिक अंतर्दृष्टि क्या होगी?
दूसरी है एक बौद्धिक अंतर्दृष्टि, इंटेलेक्चुअल इनसाइट। ये किताब दिखाती है कि महारत, मास्टरी, कैसे जानबूझकर किए गए अभ्यास, मतलब डिलिबरेट प्रैक्टिस, और मुश्किलों को मौके में बदलने से हासिल होती है। एक सच्चा वाक्य लिखने का संकल्प और आइसबर्ग सिद्धांत का विकास, ये दोनों दिखाते हैं कि अनुशासन और फालतू चीजों को हटाकर गहरी ईमानदारी और अर्थ कैसे पाया जा सकता है।
वो खाली पेट का फलसफा।
हाँ, मुश्किलें जैसे भूख और गरीबी उनके लिए फोकस और समझ बढ़ाने का जरिया बन गई, जिसे हम खाली पेट का फलसफा कह सकते हैं। ये रचनात्मकता और किसी भी हुनर को सीखने के बारे में एक बहुत शक्तिशाली सबक है।
और अंत में एक ऐसी सीख जो सबके काम आए, एक यूनिवर्सल लेसन।
तीसरी है एक सार्वभौमिक अंतर्दृष्टि, यूनिवर्सल इनसाइट। ये मूवेबल फीस्ट, चलती फिरती दावत का कॉन्सेप्ट है। ये विचार कि कैसे हमारी जिंदगी के शुरुआती बनाने वाले अनुभव, फॉर्मेटिव एक्सपीरियंसेस, वो जिंदगी भर हमें ताकत और मतलब देते रहते हैं, हमारा हिस्सा बनकर।
भले ही बाद में यादें बदल जाएं।
हाँ, भले ही बाद में उन यादों में अफसोस या नॉस्टैल्जिया घुल जाए, पेरिस और वो दौर हेमिंग्वे के लिए एक ऐसी ही कभी न खत्म होने वाली दावत बन गया। ये हमें याद दिलाता है कि हमें जानबूझकर जीना चाहिए, असली अनुभवों की तलाश करनी चाहिए और उन पलों को सहेजना चाहिए जो हमारी जिंदगी को शक्ल देते हैं, क्योंकि यही यादें भविष्य में हमारा सहारा बनती हैं।
हेमिंग्वे की कहानी और एक किताब वाकई हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है, कला, जीवन, यादें और उन फैसलों के बारे में जो हम सब करते हैं। एक सवाल जो मेरे मन में रह गया और शायद हमारे श्रोता भी इस पर सोच सकते हैं, क्या आज की इतनी तेज रफ्तार दुनिया में, जहां हर कोई तुरंत नतीजे चाहता है, इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन, क्या हेमिंग्वे जैसा धीरज और अनुशासन अपनाना संभव है? क्या एक सच्चा वाक्य लिखने के लिए आज भी उतनी ही मेहनत और ईमानदारी चाहिए, या आप शॉर्टकट ज्यादा हावी हैं? सोचने वाली बात है। फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।